अब ये यहां से आगे जो आयात हैं, ये 78 से लेके आगे 100 तक तकरीबन, इसमें मैंने जैसे आपको बताया कि पुराने करीम के ऊपर और नमाज के ऊपर बड़े इसके अंदर जोर है। पहले भी हमने कुरान की बात पढ़ी है कि इनके अंदर अब आप देखेंगे नमाज के औकात की आपको बात बताई गई। अकीम सलात, कायम करें नमाज। नमाज को कायम करने का हुक्म है हर जगह, पढ़ने का सिर्फ नहीं, यानी कायम करना, इसको एस्टेब्लिश करना, इसमें इसकी पाबंदी भी आती है, वक्त की पाबंदी भी है इसके अंदर, क्योंकि जो नमाज है वो वक्त की पाबंदी के साथ ही है। ऐसा नहीं है कि आप पूरे दिन की नमाजें रात को पढ़ लें। इन्ना सलात कानत अल मुमिनीना किताब मौकूता, अल्लाह ताला ने फरमाया ये वक्त की पाबंदी के साथ है। फिर इसमें वुजू भी करना है, वुजू के बगैर ही ना शुरू कर दें, ये कोई बात नहीं है, वुजू टूट भी गया था तो कोई बात नहीं, वुजू की परवाह ही नहीं है, वुजू ही अच्छी तरह नहीं किया, कपड़े भी पाक साफ हों, और फिर नमाजों की तमाम की पाबंदी हो। कब करें? अब क्या औकात बताए गए? एग्जैक्ट औकात तो हमें फिर हदीस से पता चलते हैं, सुन्नत से पता चलते हैं, लेकिन यहाँ पे इशारा देख लें, ली दुलूक की शम्स, दुलूक ढलने के वक्त शम्स के, दुलूक कहते हैं असल में पलटना, जैसे तो सूरज जब पलट जाता है यानी ढलने की तरफ चला जाता है उस वक्त, जिसको हम कहते हैं जवाल का टाइम। अब एक जवाल के टाइम को भी प्लीज एक गलत फहमी अपनी निकाल दें, हम 12 बजे को जवाल का टाइम समझते हैं, कि वो जवाल का टाइम आपकी घड़ियां तो देख लें, वो आप यहाँ पे 1 घंटा आगे कर देते हैं, 1 घंटा पीछे कर देते हैं, साल में 2 दफा तो हमारी घड़ियां बदलती हैं, पिछले दिन वही 12 का टाइम था, अगले दिन वो 1 का टाइम हो जाता है, पिछले दिन वो 12 का टाइम था, अगले दिन वो 11 का टाइम हो जाता है, तो आगे पीछे तो घड़ियां होती रहती, तो आप क्या 12 बजे देखते रहेंगे? ये इग्नोरेंस की बात है ना, ये हालत की बात है। 12 बजे को छोड़ दें, 12 के टाइम से जवाल का नहीं ताल्लुक है। जवाल किस वक्त है? जब बिल्कुल सूरज ऊपर होता है, यानी अब आप कैसे करेंगे, बाहर तो नहीं देखते रहेंगे, असल में जोहर से 10-15 मिनट तक पहले तक वो जवाल का टाइम होता है, जब वो ढलने की तरफ जाता है ना तब जोहर का टाइम होता है, ठीक है? तो दुलू की शम्स इला गसक लैली, और रात की तारीकी तक, तो दुलू की शम्स क्या है, इसके अंदर अब आपकी आ गई सूरज ढलने से लेकर आगे तक रात की तारीकी तक कौन सी नमाजें आ गई, ये अब आपकी जोहर भी आ गई, असर भी आ गई, बाज ने इसके अंदर ही मगरिब भी ली है, ठीक है, क्योंकि वो भी सूरज के गुरु भी हो रहा होता है, तो इसके अंदर आपकी ये 3 नमाजें आ गई। और इला गसक लईल, गसक लईल तक आपने नमाज पढ़नी है, और गसक कहते हैं रात की तारीकी जब मुकम्मल हो जाए, तो वो उसके अंदर फिर कौन सी आ गई, ईशा की नमाज आपकी आ गई, तो आपकी 4 नमाजें यहां पे कंप्लीट हो गई। वह कुरान अल फजर, और कुरान फजर इस जगह कुरान बोल के असल में नमाज मुराद है, क्योंकि कुरान नमाज में ही पढ़ा जाता है ना ज्यादा, तो ये 5ों नमाजें आपकी यहां पे मुकम्मल हो गई। तो नमाज कायम करने का हुक्म दिया जा रहा है, और नमाज के औकात बताए जा रहे हैं, और नमाज आपको पता है कि तन्हा अनिल फहशा इवल मुनकर, बुराई से भी रोकती है, बेहयाई से भी रोकती है, परेशानियों में, मुसीबतों में, आजमाइशों में, सब में नमाज एक नुस्खा है जो बड़ा फायदेमंद है। नमाज और सबर से तुम मदद मांगो, ये हमने सूरह बकरा में पढ़ लिया हुआ है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई मसला परेशानी होती थी तो नमाज की तरफ दौड़ते थे, तो वो फर्ज नमाज के अलावा भी आपको कोई परेशानी आए, वुजू करें, 2 रकत नमाज पढ़ना शुरू कर दें, फिर दुआ मांग लें, तो ये आपकी अल्लाह ताला परेशानी दूर करेगा। तो यहाँ पे फर्ज नमाजों की बात आ रही है अब, और कुरान अल फजर का खास तौर पे जिक्र किया गया, तो इसका मतलब है कि इस वक्त फजर की नमाज में कुरान ज्यादा पढ़ना चाहिए, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। इन कुरान अल फजर क्या ना मशहूद है, कुरान फजर का जो पढ़ा जाता है ना ये मशहूद है, यानी इसको देखा जाता है, इसको वॉच किया जाता है, इस पे हाजिर होते हैं। कौन हाजिर होते हैं? एक तो अल्लाह ताला के हाँ भी पेश होता है, वो तो बिल्कुल है ही, लेकिन इसके अलावा आपको पता है ना कि फजर के वक्त और असर के वक्त फरिश्तों की ड्यूटी चेंज होती है। हदीस में आता है, बुखारी की हदीस है, कि रात वाले फरिश्ते जब अल्लाह के पास जाते हैं तो अल्लाह ताला उनसे सवाल करता है कि तुमने मेरे बंदों को किस हाल में छोड़ा था। रात से वो फजर तक है ना उसके साथ, तो वो अब जा रहे हैं वापस। अब जब वो ऊपर जाते हैं ना तो अल्लाह ताला पूछता है उनसे, हालांकि अल्लाह ताला हर चीज जानता है, पर एक यानी उनकी तारीफ है ना इसमें। तो वो कहते हैं अल्लाह ताला, जब हम गए थे तो तब भी वो नमाज पढ़ रहे थे, जब हम आए हैं तो उस वक्त भी वो नमाज ही पढ़ता, वो उनको छोड़ के आए। तो यानी इस वक्त की नमाज की अहमियत भी हमें पता चलती है, इस वक्त इन नमाजों में कुरान पढ़ने की अहमियत भी हमें पता चलती है। और असर के वक्त तो आपको पता है ना सिरी नमाज होती है ना, यानी उसमें ऊंची के रात नहीं होती जमात में जब आप पढ़ते हैं, लेकिन इसमें तो जहरी होती है, इसमें तो ऊंची आवाज में पढ़ते हैं। तो ये वक्त के कुरान को वो मुशाहिदा करते हैं, वो देखते हैं इसको। तो इसलिए इस वक्त का कुरान पढ़ना बहुत ही यानी ज्यादा काबिले तारीफ है, और हमें चाहिए कि हम कुरान को याद करें, क्योंकि आप इस वक्त कुरान हाथ में पकड़ के नहीं पढ़ सकते। कुरान करीम का कुछ हिस्सा हमारे सीने में होना चाहिए ताकि हम अपनी किरात लंबी कर सकें। तो इस वक्त जो फजर का होता है ना, इसमें आप सिर्फ सूरह इखलास और ये छोटी छोटी सूरतें ना पढ़ें, बल्कि कोई लंबी किरात करने की कोशिश किया कीजिए। मगर असल में होता यह कि आजकल हमने रातों को दिन बना लिया, इतना लेट सोते हैं कि जब, और हमारे फंक्शंस भी माशाल्लाह वो शुरू ही ऐसे रात के 9 बजे होते हैं। मुझे अफसोस होता है जब लोग दावतों पे इतनी लेट बुलाते हैं, यानी अब आप जब तक वो आपको खाना देते हैं, जब तक आप वहां से फारिग होकर घर पहुंचते हैं तो 11-12 बज गए होते हैं। उसके बाद कौन उठेगा कि कोई तहज्जुद के लिए उठे या कोई फजर के लिए उठ सके? अगर उठ भी गए, चलो जो लोग उठते हैं माशाल्लाह उठ भी गए, तो क्या लंबी की रात करेंगे? वो तो बताएंगे कोई दिमाग चल रहा होता है उस वक्त। बहुत जरूरी है कि अगर इस पे अमल करना है तो हम अपने रात के सोने को, उसके टाइमिंग को सही करें। वैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा के बाद ये फरमाया कि वो सो जाओ, तुम ज्यादा उस वक्त उसके बाद बहुत ज्यादा लेट करने को पसंद नहीं किया गया, बहुत बातें करने को पसंद नहीं किया गया, इल्ला ये कि आपके कोई मेहमान आए हुए हैं, आप उनको कोई वक्त दे रहे हैं या कुछ है, नहीं अदरवाइज ऐसा नहीं। हम लेकिन हम बाय चॉइस लोगों को इनविटेशन ही लेट का देते हैं, पता नहीं क्यों देते हैं, मुझे तो इसकी समझ ही नहीं आई आज तक कि क्या इसके अंदर हिकमत है। पता नहीं आप लोग ही बता सकते होंगे कि हिकमत क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रात का खाना खा के भी उसके बाद फौरन नहीं सोते थे, और आज साइंस भी कहती है कि हेल्थ वाइज भी आपके लिए बहुत बुरा है कि रात को खाना खा के फिर उसके बाद फौरन सो जाना। तो खाना ऐसे वक्त में खाना चाहिए कि जिसके अंदर थोड़ा सा आपके टाइम मिले, उसके बाद एक कम से कम 2 घंटे आपके पास होने चाहिए सोने से पहले। लेकिन पार्टियां शुरू ही लेट होती हैं, फिर रात रात तक चलता रहता है सिलसिला खाने पीने का। तो अल्लाह आलम ही क्या इसके अंदर लोगों को मिलता है। और फिर नमाजें कजा, फिर उठना मुश्किल, और उठ गए या तो क्या पढ़ेंगे वो इतना लंबा कुरान। तो इसलिए अपने आप को ना, जैसे हमारा दीन है उसके मुताबिक अपने आप को मोल्ड करें। हमें कोई मजबूर तो नहीं करता ना कि हम लेट लेट तक जागते रहे। अब फिर कई लोगों को लेट ही जागने का वैसे ही शौक होता है, और वो सारी रात ही बैठ के कभी वो मूवीज देखते रहेंगे, कभी कुछ करते रहेंगे, बस घूमते फिरते रहेंगे कि नहीं जी हमसे जल्दी सोया ही नहीं जाता, इसलिए कि सुबह जल्दी उठते ही नहीं, सारा दिन ही सोते रहेंगे तो फिर रात को कैसे जल्दी सोएंगे। ये तो बड़ा ही जबरदस्त टाइम है। तो इस वक्त एक तो लंबी किरात करें नमाज में। अब आपने ठीक है, जितना भी आता होगा इतना तो कोई भी हाफिज नहीं है हम में से, कितना भी हम पढ़ लेंगे, उसके बाद भी चलें आप पढ़ सकते हैं जब आपने फजर की नमाज, तो कुरान खोल के फिर पढ़ लें। इस वक्त के हम कुरान जरूर पढ़ें, चाहे एक पेज पढ़ लें, लेकिन इस वक्त हमें रूटीन अपनी बनानी है कि हम जहां पे अपनी सुबह शाम की दुआएं इस वक्त में पढ़ते हैं, और कुरान करीम की तिलावत भी करें। मैं तो देखती हूँ कि जो पहले लोग होते थे, अब तो जैसे मैंने बताया ना कि बूढ़े हैं जवान है, सबका एक ही हाल है, किसी का कोई हाल सही रह ही नहीं गया। तो पहले जब हम देखते थे अपने बड़ों को, तो वो फजर के वक्त नमाज पढ़ के ऊंची आवाज में कुरान पढ़ा करते थे, घरों के अंदर कुरान की आवाज आती थी। आज सारे सारे खानदान ही सोए में, सब ही लेट सोते हैं, लेट ही उठेंगे और यही सोचते रहेंगे कजा करके पढ़ लूंगी। तो ये कजा आपकी अपनी चॉइस से नहीं हो सकती कि हाँ मैंने सोच लिया मैं कजा करके पढ़ूंगी तो कजा कर ली मेरा जब दिल चाहा। कि वो तो अगर किसी ऐसी रीजन से मसलन आप सो ही रह गए पता ही नहीं चला तो वो अलग बात है, मगर ये रोजाना का यही मामूल बना लेना। अब बाज लोग कहते हैं नहीं हमारे लिए बड़ा ही मुश्किल होता है फजर पे उठना, चार नमाजें तो पढ़ लेते हैं फजर नहीं पढ़ी जाती मुझसे, क्या करें अलार्म भी लगाते हैं पता ही नहीं चलता। तो नहीं, एक अलार्म अपने करीब रखें, एक जरा दूर जाके रखें, दो अलार्म लगाएं, करीब वाले को बंद भी कर दें, दूर वाला बंद नहीं होगा जब तक आप उठ के नहीं जाएंगे, जब उठ के जाएंगे तो खुद ही नींद खुलेगी ना फिर। और बल्कि बेहतरीन तो यह है कि फजर की नमाज मस्जिद में अदा की जाए, फिर वहां पे तो जाहिर है इमाम साहब लंबी की रात करेंगे मर्द लोग जो है, बल्कि बेहतरीन नमाज कहा गया जो जुमे के दिन खास तौर पे फजर की जो नमाज है जमात से पढ़ना, इसको बेहतरीन कहा गया, अफजल कहा गया। तो खैर हम औरतों के लिए तो नहीं है कि हम जमात से ही जाके इसका एहतमाम करें, लेकिन हम कम से कम अपने घरों में तो नमाज लंबी कर सकते हैं और फिर कुरान पढ़ सकते हैं, और इसके लिए हम अपनी जिंदगी का इस तरह से एक रूटीन बनाएं। ठीक है, वो उस वक्त, और ये सोचें कि इस वक्त फरिश्ते देख रहे हैं, लोगों के देखने के लिए तो हम बड़े काम करते हैं, सजते बनते संवारते खुद को और घरों को, फरिश्ते देख रहे हैं कि मैं कुरान पढ़ रही हूँ, यहाँ पे फरिश्ते हाजिर हुए हैं मेरे घर में, और इन्होंने मेरी रिपोर्टिंग करनी है जाके, मैं प्यारा प्यारा कुरान पढ़ के दिखाऊं अल्लाह ताला को। तो ये इस तरह के शौक होने चाहिए ना हमें। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम फजर के वक्त कुरान पढ़ने वाले हों, मतलब बुलंद आवाज से इंशाअल्लाह ताला। तो नया साल शुरू हो रहा है, हमें इंशाअल्लाह ये भी अपना एक गोल बनाना है कि हम ऊंची आवाज में घर में कुरान पाक की तिलावत करें, भले आप उसके बाद सो जाएं, लेकिन उस वक्त को जरूर, ये ब्यूटीफुल टाइम है, उसको वेस्ट नहीं हमने करना, मिस नहीं करना। और उसके बाद आपको पता है कि फर्ज नमाज के बाद जो सबसे अफजल नमाज है उसका जिक्र है, ये फर्ज नमाजों का हो गया। अब जो अफजल नमाज है, वह मिनल लैली, और रात में से, फतहज्जुद बिही नाफिला, तो तहज्जुद पढ़ें इसमें, नाफिला तल्लक आपके लिए नफल है आयद है। तो तहज्जुद के बारे में, तहज्जुद का लफ्ज जो है हा जीन दाल से है, और इसका माना होता है सोना भी और सो के उठना भी, दोनों माने हैं, उलट माने हैं दोनों। यानी अरबिक में बास वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका ना उलट माने होते हैं, एक भी एक माना भी है दूसरा भी है, दोनों ही माने उसके अंदर होते हैं। तो यानी जो सो के उठने के बाद अदा की जाए उसको सब तहज्जुद कहते हैं। इससे बाज लोगों ने ये समझ लिया कि तहज्जुद सिर्फ वो है जिसमें सोना जरूरी है, और अगर कोई सोया नहीं है तो पता नहीं वो ये नमाज पढ़ ही नहीं सकता। तो ये डेफिनेशन के एतबार से तो ठीक है कि सो के फिर उठ के पढ़ी जाए वो तहज्जुद कहलाएगी, मगर एक रात के कयाम की भी तो बात आती है, कयामुल लैल जिसको कहते हैं, और कयामुल लैल रात के किसी पहर भी आप कर सकते हैं, वो तहज्जुद ही कहलाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ औकात में नमाज पढ़ी है, रात के मुख्तलिफ औकात में भी, और फिर फरमाया वितर को आखिरी नमाज कर लो। तो हम यहां से देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहा गया आपके लिए नफल है, बाज लोग कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये नमाज फर्ज थी, फर्ज नमाज थी ये आपके लिए, वल्लाहु आलम, मगर ज्यादा यही पता चलता है यहां से कि आपके लिए भी नफल थी, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको ऐसे लिया जैसे फर्ज होती है। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खसूसियत है कि आपने इवन बीमार भी होते थे तो अगले दिन इसको मेकअप करते थे, अगर ये फर्ज होती फिर तो आपने कभी छोड़नी ही नहीं थी, लेकिन जैसे मुजदलिफा के अंदर कोई भी नमाज नहीं पढ़ी पूरी रात, तो नफली नमाज है लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्ज की तरह इसको लिया। तो जो तहज्जुद रोज पढ़ने वाले हैं रोजाना तहज्जुद का एहतमाम होता है, कभी उनकी रह जाए, मसला है कि किसी रात सो ही रह गए नहीं पता चला, तो वो फिर जब सूरज चढ़ जाता है ना, सूरज निकल आता है, तो उसके बाद से जोहर के दरमियान किसी वक्त भी नफल पढ़ लें, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करेगा कि उनके लिए भी उसका उनको अजर मिल जाएगा, कि वो रोज पढ़ते थे। तो हमें ये पता चलता है कि रात में किसी वक्त में इस नमाज को अदा करना, ये इतनी बड़ी फजीलत है इसकी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स 2 रकत नमाज तहज्जुद पढ़ लेगा उसका शुमार कसरत से अल्लाह को याद करने वालों में हो जाएगा, कसरत से अल्लाह को याद करने वाले, सुभान अल्लाह। और फिर यानी आप 2 रकत भी पढ़ सकते हैं, आप 4 भी पढ़ सकते हैं, 6 भी पढ़ सकते हैं, 8 भी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 रकत पढ़ी है, ठीक है, तो आप जितनी आपके लिए आसानी हो, ये जरूरी नहीं कि आपने इतनी ही पढ़नी है कि आप 8 ही पढ़े, आप एक नफल के तौर पे आप 8 से ज्यादा भी पढ़ सकते हैं, आपकी अपनी हिम्मत है, मगर बेहतर ये है ना कि आप जो पढ़े ना उस पे कयाम लंबा करें, इंस्टेड ऑफ कि आप जल्दी 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 बस मैंने गिनतियां करनी है कि मैंने 20 पढ़ ली, 10 पढ़ ली, मैं तो इतनी पढ़ती हूँ, आप उनको ही लंबा करें, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये नमाज लंबी होती थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए लोगो सलाम को फैलाओ, सलाम करने को ना हम एक दूसरे को सलाम, इसको फैलाओ, खाना खिलाओ और रात को नमाज पढ़ो जबकि लोग सोए होते हैं, यानी तहज्जुद की नमाज, इस तरह तुम जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाओगे, सुभान अल्लाह, सलामती के साथ, यानी कोई परेशानी नहीं तुम्हें होगी। तो ये क्या काम बताए, 3 काम, सलाम करना कौन सा मुश्किल है, खाना खिलाना, चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई गरीब है, चाहे मेहमान है, चाहे कोई भी है, उनको खाना खिलाओ और रात को तहज्जुद। अभी मैं आपको इसकी कुछ बातें भी बताऊंगी, कभी ये ना सोचिएगा कि मैं तो पढ़ ही नहीं सकती, ये तो कोई लोग और ही पढ़ सकते, मैं कहाँ पढ़ सकती, नहीं, इंशाल्लाह ये 3 काम आसान ही है, अल्लाह हमें भी सलामती के साथ जन्नत में दाखिल होने वालों में शामिल फरमा देना। कि और एक एक हदीस में और भी आता है कि उनको जन्नत के बाला खाने मिलेंगे, बाला खाने ऐसे, मैंने जो रमजान के अंदर जन्नत की मेरी मजलिसें सीरीज की थी उसमें मैंने आपको बताया था कि किसी को बाला खाने मिले हैं, तो वो तहज्जुद की वजह से। और फिर तिर्मिजी की हदीस है कि अल्लाह ताला बंदे के सबसे करीब रात के आखिरी पहर में होता है, बस तुम उनमें से हो जाओ जो इस मुबारक पहर में अल्लाह का जिक्र करते हैं, बस तुम उनमें से हो जाओ, यानी 2 बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम उनमें से हो जाओ। अब ये फर्ज नहीं है, इसीलिए फरमाया तुम उनमें से हो जाओ, फर्ज नहीं किया गया, लेकिन जो कर सकता है करे, क्योंकि फर्ज नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज ये है तहज्जुद की नमाज। तो जिस जो अपने फर्जों पर दवाम उसकी यानी पाबंदी अपनी फर्जों की करता है, अब उसके बाद उसके लिए नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इसकी कोशिश करें। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुखारी और मुस्लिम की जो रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के पहले हिस्से में सोते थे, आखिरी हिस्से में उठते थे और नमाज पढ़ते थे, क्योंकि वो ज्यादा ही अफजल है, पूरी रात में भी, पूरी रात का भी सबसे अफजल टाइम कौन सा है, वो जो आखिरी पहर है रात का। आखिरी पहर कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप मगरिब से फजर तक देख लें टाइम को, वो कितने आवर्स बनते हैं, 3 पहर होते हैं ना रात के, पहला पहर, दरमियानी पहर और आखिरी पहर, तो आप मसलन है कि 12 आवर्स का मसलन है, 12 आवर्स बनते हैं, मिसाल के तौर पे आपकी 6 बजे मगरिब हो जाती है और 6 बजे ही फजर होती है, मैं वैसे कह रही हूँ, अब आप अपना टाइम आप देख सकते हैं, तो 12 घंटे बन गए। अब 12 घंटे को 3 में डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करें, 3 3 घंटे बन गए ना, 4 4 घंटे के स्लॉट्स बन गए, ठीक है। अच्छा, अब ये चार पहले जो 4 घंटे वो पहला पहर है, दूसरे 4 घंटे दूसरा पहर है, तीसरे 4 घंटे जो है वो आखिरी पहर है। ज्यादा जो आसान है, मैं आपको आसानी वाला काम बताती हूँ, और जो टिप भी है आपके लिए, और जिसमें ज्यादा ज्यादा बेहतरी भी है, वो ये है कि अगर आपको फजर की पाबंदी है ना, तो फजर से थोड़ा पहले उठ जाएं, बस थोड़ा पहले उठ जाएं, टू स्टार्ट विद आप चलें 15 मिनट पहले उठ जाएं, 3 4 मिनट में आपने वजू किया और सिर्फ 2 नफल पढ़ लें, बस दैट्स इट, और दुआ कर लें। ओके, ये टाइम इतना मुबारक टाइम है, हदीस में आता है कि अल्लाह ताला हर रात में एक तहाई रात, मैंने आपको बताया ना वन थर्ड नाइट, मैंने आपको बताया कि थ्री पार्ट्स होते हैं हर नाइट के, तो ये जो लास्ट पार्ट है, लास्ट वन थर्ड है, पहला वन थर्ड भी मैंने आपको बता दिया, दूसरा वन थर्ड भी, तीसरा वन थर्ड भी, हर एक की अपनी अपनी बात है ना, लेकिन जो थर्ड जो पार्ट इसका बनता है ना, उस जब वो रात ये वाला पहर उसका शुरू हो जाता है, तो आसमाने दुनिया पर अल्लाह ताला तशरीफ लाता है और फरमाता है कौन है जो मुझसे दुआ करे मैं उसकी दुआ कबूल करूं, कौन है जो मुझसे मांगे तो मैं उसको अता करूं, कौन है जो मुझसे मगफिरत चाहता है तो मैं उसको बख्श दूं। तो इतनी पुकार आ रही है और उस वक्त सोचा करें कि मेरा रब मुझे पुकार रहा है, पूरी रात का बेस्ट टाइम, पूरी रात का बेस्ट टाइम है। अब इस टाइम को हम सब अवेल कर सकते हैं, सब हम इसके अंदर पढ़ सकते हैं, तो हमें इसका ये, लेकिन वही कोशिश करें जो पहले उनके फर्ज पक्के हैं, ये ना हो कि भाई तहज्जुद के शौक के अंदर वो कहेंगे भाई फर्ज नमाज ही रह गई, ये कि उसके बाद हमसे तो फजर के लिए ही नहीं उठा गया। ऑब्वियसली फर्ज नमाज ऑन टॉप ऑफ दिस, आप ये नहीं कह सकते कि मैं तहज्जुद पढ़ती हूं तो उसके बाद फजर पे मेरे से उठा नहीं जाता। तो ये पहले आप अपनी, फिर अगर आपके साथ इस तरह का प्रॉब्लम है ना कि अगर आपने तहज्जुद पढ़ी और फिर फजर आप छोड़ देते हैं, तो फिर पहले आप अपनी फजर को पक्का करें। एक हदीस में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम जरूर तहज्जुद पढ़ा करो, ये तुमसे पहले के अंबिया और सालेहीन का तरीका रहा है। और पहली बात की क्यों, कि अंबिया का तरीका है सालेहीन वो भी पढ़ा करते थे तहज्जुद। नंबर टू, कुर्ब इलाही का खास वसीला है, अल्लाह का कुर्ब मिलता है। नंबर थ्री, गुनाहों के बुरे असरात से बचाने वाला है, बचाने वाली है ये नमाज, और नाफरमानी से रोकने वाली चीज है, यानी कितने फायदे हैं इसके। ठीक है, तो ये जिसको अल्लाह की नाफरमानी से भी बचाने वाली चीज हो, और फिर कुर्बे इलाही का भी जरिया हो, फिर सालेहीन का भी तरीका हो, गुनाहों के असरात होते हैं तो गुनाहों के असरात भी इंसान से दूर हो जाते हैं, तो इसलिए कोशिश तो सभी कर सकते हैं ना। अब जैसे मैंने आपको बताया ये लास्ट वन थर्ड में आप पढ़े, इजी भी सब है, सबसे ज्यादा जो फजर से पहले का टाइम है, और नंबर टू ये भी कि वो सबसे बेस्ट टाइम है, लेकिन अगर मिसाल के तौर पे आप नहीं पढ़ सकते उसको उस वक्त, तो जो लोग मसलन रात को लेट सोते हैं, वैसे तो लेट सोना नहीं चाहिए, लेकिन अगर मसलन लेट सोते हैं तो जिस वक्त आपने इशा तो पहले पढ़ ली भी है, सोने से पहले ही पढ़ लें, सोने से पहले पढ़ लें, वो भी आपका कयाम ही हो गया, वो एक तहज्जुद है। ठीक है, रात के वक्त इशा और फजर के दरमियान में जो नमाज पढ़ जाए ना उसको तहज्जुद ही कहते हैं। तो अब आप उसमें, मैंने जैसे आपको बताया दो पढ़ लें रकअत, चार पढ़ लें, लेकिन स्टार्ट दो से कर लें आप, ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ तो कयाम करें ना। क्या हम नहीं चाहते कि हम भी इन लोगों में शामिल हो जाएं जो अंबिया के तरीके हैं और ये सब? तो तहज्जुद का एहतमाम यार, इसका शौक होना हमें चाहिए। अगर बाज लोग ऐसे होते हैं कि उनकी ड्यूटी रात की होती है, वो रात को 1-2 बजे घर आते हैं, तो वो उस वक्त पढ़ सकते हैं, उस वक्त उनकी तहज्जुद हो जाएगी। इसी तरह एक और टिप है ये कि अगर आपसे नहीं उठा जाता, तो रात को बाथरूम जाने के लिए तो सब उठते हैं, या बच्चे नहीं उठते जाहिर है, लेकिन हर एक एज में आपके फिर मुख्तलिफ चीजें होने लगती हैं, जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती है रात को बाथरूम के चक्कर भी बढ़ने लगते हैं। तो ऐसा करें, आप जब भी रात को उठें उस वक्त आप वुजू करके और सिर्फ 2 रकअत पढ़ लें, ठीक है, और इशा के बाद आप जो भी पढ़ेंगे ये सब तहज्जुद ही हो जाएगी। आप चाहे सोए नहीं भी हैं, ये याद रखिएगा, चाहे नहीं सोए आप, बाद लोग इधर उधर घूमते रहते हैं, फिर मसलन इशा भी पढ़ ली भी है, उसके बाद कभी कुछ कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, फिर उसके बाद आप सोने लगे, मसलन आप पढ़ाई का कोई काम कर रहे हैं, अल्लाह करे हमारे ऐसे शौक हो कि हम रातों को भी पढ़ने वाले हों, अपना सबक याद कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, और उसके बाद जब सोने का टाइम है, आप बड़ा लेट हो गया, आपको लगता है कि मैं तहज्जुद के लिए कैसे उठूंगी, आप तो अब आपके दिमाग में है कि फजर से पहले ही उठूंगी तो तहज्जुद है, और मैं तो आज उठ ही नहीं सकती फजर से पहले, ऑलरेडी लेट हो गया, तो अब आप क्या करें, उस वक्त ही पढ़ लें, वही आपकी तहज्जुद हो जाएगी। ठीक है। इसी तरह एक और आपको बहुत जबरदस्त बात बतानी मैंने, 4 रकतें आप ईशा के बाद जब पढ़ लेते हैं, जैसे हम ईशा के फर्ज पढ़ते हैं उसके बाद हम 2 सुन्नत पढ़ते हैं, तो 4 अगर आप रकत पढ़ लेते हैं तो उनकी खसूसियत क्या है? 4 रकत ऐसे पढ़नी है कि एक सलाम के साथ, दोर के बाद फिर सलाम नहीं फेरना, तहियात पढ़ के जैसे आप खड़े हो जाते हैं उस तरह से पढ़नी है। तो ये 4 इकट्ठी पढ़ें तो इसका सवाब ऐसे है जैसे लैलतुल कदर में कयाम किया आपने, तो इतनी बड़ी फजीलत है। ये जो हम 4 रकत सुन्नत कह के हम ईशा के फर्जों से पहले पढ़ते हैं ना, वो सुन्नत में नहीं है, तो बेहतर है कि आप बाद में पढ़े ना, और उसके बाद आप जो कुछ भी नहीं कर सकता तो कम से कम वो ये तो करे ना, जो रात को नहीं उठ सकता किसी भी सूरत तो वो ये कर ले और उसके बाद वितर पढ़ ले। ठीक है। याद रखें, अगर आपको कोई परेशानी कोई मसला है, हर वक्त लोग पूछते हैं जी हमें कोई वजीफा बताएं, ईमेल्स मुझे आती रहती हैं, इस चीज का वजीफा बता दें, उसका वजीफा बता दें, भाई हर मसले का तो हाल मैंने अभी आपको ये हदीस नहीं बता दी, अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है कि मेरे से कुछ मांगना है तो मांगो, तो क्या उस वक्त हम खड़े नहीं हो सकते 2 रकत पढ़ लें? हम चाहते हैं हमें लंबे लंबे वजीफे बताते जाएं, हालांकि ये सबसे ज्यादा कारगर है, सबसे ज्यादा काम आएगा आपको, ये सब बेनिफिशियल है आपके लिए। और स्टार्ट में जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं और वो समझते हैं कि बूढ़ा हमें मुश्किल लगता है क्या करें, आप स्टार्ट में ना वीक में एक दफा पढ़ना शुरू करें, एक दिन को ही आप समझ लें, जिस दिन में आपको लगता है मतलब वीकेंड पे, मुझे लगता है वीकेंड तो ज्यादा ही लोग लेट उठते हैं क्योंकि रात को ही नहीं सोते जल्दी, तो चले आप वीक डे वीकेंड हर एक का अपना है, जो भी आपको इजी लगता है, आप मसलन कहते हैं कि मैं मंडे को बस मैं आपसे मंडेज को मैं रख लेती हूँ कि उस पे मैं पढ़ा करूं, तो फिर आप एक दिन शुरू करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको 2 दिन करें, इंशाल्लाह आप देखेंगे पर उसके बाद आपकी रूटीन ऐसी बन जाएगी कि आप वो कभी मुश्किल ही नहीं होगी। क्या, लेकिन शुरू के अंदर थोड़ा सा थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी, इसीलिए ये नफ्स को कुचलने के लिए बड़ा बड़ी कारगर है। अल्लाह ताला ने अपने नबी को फरमाया ना शुरू में, या अय्युहल मुज़म्मिल कुम लैला इल्ला क़लीला, वो रात में उठे आप, तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक को ये अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत आई, और यहाँ पे भी है कि तहज्जुद पढ़े, तो कितनी अल्लाह को प्यारी होगी ये नमाज। इंसान अगर जो इंसान अपनी नींद तोड़ सकता है ना, वो अपने नफ्स को और चीजों में भी कुचल के अल्लाह की फरमाबरदारी पे ला सकता है, तो ये नफ्स को अल्लाह की फरमाबरदारी पे लाने के लिए बहुत बहुत यूजफुल है, बड़ी इससे फायदा होता है। ठीक है, इतना मेरे ख्याल में आप लोगों को शौक दिलाने के लिए काफी है, तो इंशाल्लाह ताला शुरू करेंगे ना फिर इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह उस वक्त शुरू करेंगे जो फजर से पहले का टाइम है। ठीक है, हम बेस्ट क्यों ना ले, वैसे तो आप उसके बाद भी पढ़ सकते हैं, मैंने कहा जो अक्सर ही लोग आजकल लेट सोते हैं, 8 साढ़े 8 बजे अगर ईशा हो रही होगी तो फिर वो 11 बजे तक सोएंगे, सर्दियों में और भी जल्दी ईशा हो जाती है, ईशा पढ़ के बैठे रहते हैं बातें करते रहते हैं फिर जाके सो जाते हैं, तो उस वक्त सोने से पहले पढ़ लें। ठीक है, लेकिन हम इंशाल्लाह बेस्ट करेंगे, और फिर अगर वो बेस्ट वाला टाइम हमें कभी नहीं मिलता और हमें लगता है कि आज बहुत ही देर हो गई बातें करते करते 1 बज गया, तो अब मैं 3 4 बजे नहीं उठ सकूंगी, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम उसी वक्त पढ़ के ही सो जाएंगे क्योंकि हमें से उस वक्त नहीं फिर उठा जाएगा। ठीक है, हम शैतान जरूर आगे कहेगा नहीं जी तुम तो इतनी मसरूफ हो, तुम तो फिर क्या करोगी, तुम्हारा तो फिर अगले दिन रूटीन खराब हो जाएगी, ये हो जाएगी, कुछ भी नहीं होता, अल्लाह की मदद आती है। अल्लाह ताला ने ये फरमा के ना अपने नबी को ये फरमाया कि आप तहज्जुद पढ़ा करें, ये नफल है जायद है आपके लिए, उसके बाद क्या फरमाया, आसा यब आसा का उम्मीद है कि ये पहुंचा दे आपको रब्बू का उम्मीद है कि ये पहुंचा दे आपको तेरा रब मकाम महमूदा, आपका रब आपको उम्मीद है कि मकाम महमूद पर पहुंचा दे। आप देखें कि इसके बाद फरमाया आप तहज्जुद पढ़ें, उम्मीद है का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, आशा का मतलब, कि जब कुराने पाक में अल्लाह ताला के लिए किसी काम करने के लिए आता है तो फिर उम्मीद का माना नहीं होता, फिर यकीन का माना होता है, यकीन अल्लाह ताला आपको पहुंचाएगा। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने फरमाया आप ये पढ़े और अल्लाह आपको ये कर देगा, यानी इससे साथ अटैच किया गया। ये कितनी बड़ी बात है ना कि ये इतनी बड़ी फजीलत वाली नमाज है कि देखें अल्लाह ताला इसके बाद आपको मकामे महमूद अता करेगा। मकामे महमूद के कॉन्टेक्स्ट में ये बात आई है। और यहाँ मकाम महमूद क्या है, बुखारी की हदीस से हमें पता चलता है कि कयामत के दिन लोगों के फैसले नहीं हो रहे होंगे, लोग बड़े परेशान होंगे, इंतजार में लगे होंगे कि कब फैसले शुरू होंगे, तो वो फिर अंबिया के पास जाएंगे। जैसे आपको वो लंबी हदीस में अभी इस वक्त नहीं बता सकती क्योंकि काफी उसकी वो बहुत उसमें डिटेल है। तो आपको पता है कि पहले आदम अलैहिस्सलाम के पास, सबने सुनी भी है ना, उसके बाद फिर नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास, फिर मूसा अलैहिस्सलाम के पास, फिर ईसा अलैहिस्सलाम, मतलब उलुल अज़्म पैगंबरों के पास जाएंगे, जो बड़े बड़े अल्लाह के हाँ दर्जात वाले पैगंबर, उनके पास जाएंगे। लेकिन सारे अंबिया माजरत कर लेंगे कि आज नहीं हम कुछ कर सकते, आज अल्लाह ताला इतना गजबनाक है कि वो भी कहेंगे कि नहीं हम नहीं सिफारिश की जरूरत कर सकते। सब अब अंबिया अपनी पकड़ अपनी गिरफ्त से खौफजदा होंगे, नफसी नफसी पुकार रहे होंगे, अपनी जान की अमान तलब कर रहे होंगे। तो जहां अंबिया का ये हाल होगा तो वहां पर कोई कैसे कोई कोई बोल ही नहीं सकता। और लोगों की हालत इतनी मुश्किल होगी इसलिए क्योंकि सूरज करीब होगा, लोग कब से इंतजार में खड़े हुए हैं, फैसला शुरू नहीं हो रहा, तकलीफ इतनी नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगी, तब जाके लोग कहेंगे ना कि ये इतना सख्त हम मुसीबत के अंदर आए हुए, इतनी सख्त मुश्किल में आए हुए, हमें इतनी परेशानी हो रही है, तो अब हम कोई ऐसा आदमी तलाश करें जो अल्लाह ताला के पास सिफारिश करे ताकि हमारा हिसाब किताब तो शुरू हो, तब वो अंबिया के पास जाएंगे। तो फिर जब ईसा अलैहिस्सलाम के पास एंड में जाएंगे तो वो कहेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ, तो फिर लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे। और नबी अलैहिस्सलाम को जब ये कहा जाएगा कि आप सिफारिश करें, आप खातमुल अंबिया हैं, आपके अगले पिछले सब गुनाह माफ हैं, आप हमारे लिए सिफारिश करें, आप देख रहे हैं हमारी हालत क्या हो रही है, तो तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाएंगे और अर्श के नीचे पहुंचकर अपने रब के हजूर सजदे में पड़ जाएंगे। और उस वक्त फिर अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी हमदो सना के वो कलिमात दिल में डालेगा, जो उस वक्त ही डालेगा, अभी दुनिया में नहीं आपको पता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक्त अल्लाह ताला डालेगा, और इससे पहले अल्लाह ताला ने किसी को नहीं वो बताया। फिर इरशाद होगा या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर उठाएं और सवाल करें, आपको अता किया जाएगा, सिफारिश करें, आपकी सिफारिश सुनी जाएगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अल्लाह ताला से सिफारिश करूंगा और मेरे लिए हद मुकर्रर कर दी जाएगी। और फिर आगे हदीस है, यानी आपकी शिफात से लोगों का हिसाब किताब शुरू होना है। ये वो मकाम है, ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाएंगे और सलाम करेंगे, ये मकाम महमूद है। मकाम महमूद मीन्स तारीफ वाला मुकाम, कि ये ऐसा मकाम है जिसको कहेंगे प्रेज वर्दी स्टेशन। सारी इंसानियत आपकी एहसान मंद होगी, आपकी तारीफ करेगी, आप की वजह से ये अगले स्टेप पर कयामत का दिन जाएगा, आपकी सिफारिश के बगैर नहीं, आपकी सिफारिश के साथ जाएगा। और आपका नाम भी मोहम्मद इसी से है ना, जो तारीफ किया गया, इसकी तारीफ की गई। अल्लाह अकबर। तो नबी अलैहिस्सलाम को ये बहुत बड़ा एक मुकाम है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया जाएगा, और इसका वादा अल्लाह ताला ने दुनिया में भी कर लिया कि अल्लाह ताला आपको मकाम महमूद अता करेगा। इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करने से पहले इजाजत चाहेंगे। और फिर भी अगर कोई बंदा ये समझता है कि अगर वहां पे अंबिया की हालत होगी तो जी हमारे जो फलाने पीर हैं और हमारे जो फलां हैं वो तो हमें बख्शवा लेंगे उस दिन, वो तो हमें ले जाएंगे उस दिन, जब पैगंबर भी नफसी नफसी इब्राहिम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह से बढ़ के और कौन पैगंबर हो सकते हैं, जिस दिन कलीमुल्लाह ऐसे कर रहे होंगे, जिस दिन आदम अलैहिस्सलाम जिनको अल्लाह ताला ने अपने हाथ से पैदा फरमाया वो इस कदर खौफजदा होंगे, तो उस दिन आप बताएं कि कौन किसी की सिफारिश कर सकता है, कौन किसी को आगे जन्नत तक लेके जाने की जुर्रत कर सकता है। और ऐसी ऐसी बातें बनाई नहीं है जी, वो अजमेर वाले ऐसे करेंगे और अल्लाह माफ करे उनको, गौसे पाक कहते हैं फरियाद रस जो है, यानी हजरत अब्दुल कादिर जीलानी, वो ऐसे करेंगे, और इतनी इसमें कहानियां खुद ही से बना के रखी हुई है, अल्लाह माफ करे हम सबको। तो इस तरह से अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना एक मकाम अता करेगा। और इसकी हम जब अजान के बाद हम दुआ मांगते हैं तो उसके अंदर भी हम ये कहते हैं कि अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम अबाथ मकाम महमूद अल्लज़ी वाता वरजुकना शफाअतहु यौमल क़ियामा। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जो और वसीला की हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ करते हैं। तो ये दुआ भी बहुत अच्छी दुआ है और इसको करना चाहिए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया कि तुम ये मेरे लिए दुआ करो तो मैं तुम्हारे लिए कयामत के दिन सिफारिश करूंगा। समझ आई? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हमें ये ताकीद फरमाई है, लिहाजा हमें इसकी इस दुआ को याद करना चाहिए और इसका इहतमाम करना चाहिए कि जब भी हम अजान सुने तो दुरूद शरीफ भी पढ़ें और इस दुआ को भी हम शामिल रखें। ठीक है? और अल्लाह ताला ने ये फरमाया और फरमाया ये जो एजाज आपको मिलेगा, तारीफ किया हुआ मकाम मिलेगा, मकाम महमूद पे अल्लाह ताला आपको फाइज फरमाएगा। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। तिलावत सुनिए।
يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا.